एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम रॉन चरणों की पुलित्जर पुरस्कार विजेता जीवनी वॉशिंगटन अ लाइफ के आईने में जॉर्ज वॉशिंगटन को समझने की कोशिश करेंगे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति।
हाँ, और ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये वॉशिंगटन की वो जो पत्थर की मूर्ति वाली छवि है ना, उससे बिल्कुल अलग हटकर बात करती है।
बिल्कुल,
हम अक्सर उन्हें एक शांत, अडिग, मतलब देवता समान ही देखते हैं।
सही कहा।
लेकिन चरणों हमें एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो महत्वाकांक्षी था, जिसके अंदर तीव्र भावनाएं थीं, गुस्सा भी था, और जिसने खुद पर काबू पाने के लिए मतलब पूरी जिंदगी संघर्ष किया।
तो ये किताब उस मानवीय पहलू को सामने लाती है।
हाँ, और जॉर्ज वॉशिंगटन जाहिरा संस्थापक पिता, सेनापति, पहले राष्ट्रपति, ये सब तो हम जानते हैं, पर चरणों दिखाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा था।
और उनकी कहानी आज भी क्यों जरूरी है?
देखिए, ये दिखाती है कि कैसे कोई अपनी निजी इच्छाओं, अपने अहम, यहाँ तक कि अपने गुस्से पर भी कैसे काबू पाकर खुद को किसी बड़े मकसद के लिए लगा सकता है। और हाँ, वो सत्ता छोड़ने वाली बात स्वेच्छा से, वो तो लोकतंत्र के लिए हमेशा हमेशा प्रासंगिक रहेगी। चरणों की खासियत यही है, वो मनोवैज्ञानिक गहराई में जाते हैं और मिथकों को तोड़बे है।
तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनके शुरुआती साल, वर्जीनिया में जन्म 1732।
हाँ, कोई बहुत असाधारण शुरुआत नहीं थी, मतलब पिता का देहांत जल्दी हो गया था।
और औपचारिक शिक्षा भी शायद सीमित ही थी।
बिल्कुल सीमित। तो फिर ये जमीन और सैन्य गौरव पाने की इतनी इच्छा कहाँ से आई? शायद इन्हीं शुरुआती हालातों से।
अच्छा, कैसे?
पिता की कमी, सीमित साधन, इसने शायद उनमें एक एक तरह की असुरक्षा पैदा की होगी, लेकिन साथ ही खुद को साबित करने की जबरदस्त इच्छा भी जगी कि भाई मेहनत से खुद पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। जमीन उस वक्त इज्जत और पैसे का प्रतीक थी, और फौज में जाना मतलब सम्मान और तरक्की का रास्ता।
और वो सर्वेक्षक वाला काम भी तो था शुरू में।
हाँ, युवा सर्वेक्षक के तौर पर पश्चिमी सीमा पर उनके अनुभव ने उन्हें जमीन की, लॉजिस्टिक्स की प्रैक्टिकल समझ दी। वो लगातार खुद को बेहतर बनाते रहे, शिष्टाचार सीखा, लिखना सुधारा, ज्ञान बटोरा।
ये दिलचस्प है कि कमियों ने ही शायद उन्हें आगे धकेला। अच्छा, अब उनके उभार और संघर्षों पर आते हैं। फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध का अनुभव कैसा रहा? क्या वो नींव थी उनके नेतृत्व की?
हाँ, कह सकते हैं वो एक तरह की भट्टी थी उनके लिए। बहादुरी तो दिखाई पर अनुभवहीन थे, तो गलतियां भी हुई, गंभीर गलतियां, जल्दबाजी में फैसले लिए।
और ब्रिटिश अधिकारियों से भी कुछ?
हाँ, वो झेलना पड़ा उनका तिरस्कार। वो लोग औपनिवेशिक सैनिकों को कमतर समझते थे। ये अनुभव बहुत कड़वा था, पर शायद इसी से उनके मन में वो ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ एक एहसास जागा, एक अलग अमेरिकी पहचान की भावना
कि हम अलग हैं।
बिल्कुल। और ये भी समझ आया कि सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता, प्लानिंग, संगठन, ये सब भी चाहिए।
और फिर आई मार्था डैंड्रिज कस्टिस, शादी 1759 में। इसका क्या असर हुआ?
अरे, ये तो बहुत बड़ा मोड़ था। मार्था एक अमीर विधवा थी। इस शादी ने वॉशिंगटन की सामाजिक और आर्थिक हैसियत को मतलब एकदम से आसमान पर पहुंचा दिया।
वो वर्जीनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे।
हाँ, और माउंट वर्नन एस्टेट को उन्होंने बड़ी कुशलता से संभाला, खेती में नए तरीके अपनाए, बिजनेस बढ़ाया। इससे उनकी छवि एक कामयाब जमींदार, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की बनी।
चरणों दास्ता के साथ उनके रिश्ते पर भी खुलकर बात करते हैं, ये एक मुश्किल पहलू है।
हाँ, और चरणों इसे ईमानदारी से सामने रखते हैं। देखिए, वॉशिंगटन उस समय के वर्जीनिया समाज का हिस्सा थे और एक बड़े दास मालिक भी थे। उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी जीवन शैली के लिए दास प्रथा का इस्तेमाल किया, ये सच है।
लेकिन
ता पर सवाल उठने लगे थे।
ये धीरे धीरे हुआ होगा।
हाँ, बहुत धीमी प्रक्रिया थी, पर उनके विचारों में बदलाव आ रहा था। इसी दौरान ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ उनका राजनीतिक विरोध भी तेज हो रहा था। इसमें अपने आर्थिक हित भी थे और औपनिवेशिक अधिकारों की रक्षा की भावना भी।
और फिर आता है वो दौर, अमेरिकी क्रांति।
हाँ,
उन्हें महाद्वीपीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया।
या
ये उनके जीवन का शिखर कहा जा सकता है।
यकीनन, सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण दौर। और उनका चुना जाना भी सिर्फ फौजी काबिलियत की वजह से नहीं था, वो राजनीतिक रूप से भी अहम था। एक दक्षिणी वर्जीनियाई नॉर्थ की सेना का लीडर, एकता का प्रतीक।
शुरुआत तो बहुत मुश्किल रही होगी, न्यूयॉर्क में हार।
बेहद मुश्किल, सेना बिखरी हुई, साधन नहीं, अनुभव नहीं, बहुत कठिन था।
वाली फोर्ज की बात हमेशा आती है क्रांतिकारी युद्ध के जिक्र में। चोरनों से कैसे देखते हैं, वो क्या था असल में?
वैली फोर्ज, वो 1777-78 की सर्दियां, वो असल परीक्षा थी उनके लीडरशिप की। सोचिए, कड़ाके की ठंड, भूखमरी, बीमारियां, सैनिकों के हौसले पस्त थे, सेना टूट सकती थी।
तो वॉशिंगटन ने क्या किया?
चरनो बताते हैं कि वॉशिंगटन वहां डटे रहे, सैनिकों के साथ रहे, उनके दुख में शामिल हुए, अनुशासन बनाए रखा। उनकी वो जो दृढ़ता थी ना, उसी ने सेना को बिखरने से बचाया।
वो सिर्फ कमांडर नहीं रहे?
नहीं, वो एक प्रेरणा बन गए, एक प्रतीक जिसके लिए सैनिक लड़ने को तैयार थे, टिके रहने को तैयार थे। और यही उन्होंने युद्ध की रणनीति भी बदली। बड़ी लड़ाइयों से बचो, दुश्मन को थकाओ, अपनी सेना को बचाओ,
जिसे अट्रिशन कहते हैं।
हाँ बिल्कुल, और कूटनीति, जासूसी, इन सब का भी खूब इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी मदद हासिल करना इसी का नतीजा था।
और फिर यॉर्कटाउन, निर्णायक जीत, उसके बाद जो उन्होंने किया वो तो इतिहास है।
बिल्कुल, 1781 यॉर्कटाउन में अंग्रेजों का सरेंडर, युद्ध खत्म। वॉशिंगटन अपनी ताकत और लोकप्रियता के शिखर पर थे।
चाहते तो?
हाँ, चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। इतिहास में बहुत से फौजी नेताओं ने ऐसा किया है, सत्ता हथिया ली, पर वॉशिंगटन ने, उन्होंने अपनी कमान स्वेच्छा से नागरिक सरकार यानी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को सौंप दी।
ये बहुत बड़ी बात थी।
बहुत बड़ी, ये दिखाता है कि वो गणतांत्रिक मूल्यों में कितना विश्वास रखते थे, कि शासन जनता के चुने हुए नुमाइंदों का होना चाहिए। इसने सेना पर नागरिक नियंत्रण की मिसाल कायम की। ये अमेरिकी लोकतंत्र का आधार बना।
युद्ध के बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन रुका नहीं, संवैधानिक सम्मेलन?
हाँ, युद्ध के बाद वो माउंट वर्नन लौट तो गए थे, पर देश की जो पहली सरकार थी, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन वाली, वो कमजोर साबित हो रही थी। तो 1787 में फिलाडेल्फिया में जब नया संविधान बनाने के लिए सम्मेलन हुआ, तो वॉशिंगटन को सर्वसम्मति से उसका अध्यक्ष चुना गया।
उनकी भूमिका क्या थी वहाँ?
उन्होंने बहसों में शायद खुलकर ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, पर उनकी मौजूदगी, उनकी गरिमा, उसने अलग अलग गुटों में संतुलन बनाने में, सम्मेलन को कामयाब बनाने में बहुत मदद की। और वो एक मजबूत केंद्र सरकार के पक्ष में थे। युद्ध में उन्होंने देख लिया था कि कमजोर केंद्र से कितनी मुश्किलें आती हैं।
और फिर पहला राष्ट्रपति बनना, वो दौर कैसा था, चुनौतियां, उपलब्धियां?
1789, सर्वसम्मति से पहले राष्ट्रपति, उनका हर कदम एक नज़ीर बन रहा था। कैबिनेट सिस्टम शुरू किया, फेडरल जुडिशरी की नींव रखी, राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाई।
और संघीय अधिकार को स्थापित करने के लिए?
हाँ, कड़े कदम भी उठाए, जैसे वो विस्की विद्रोह हुआ था, पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में किसानों का विरोध, उसे सख्ती से दबाया, ये संदेश देने के लिए कि संघीय कानून सबसे ऊपर है।
उस समय हैमिल्टन और जेफरसन के बीच की खींचतान भी तो थी।
हैमिल्टन चाहते थे मजबूत केंद्र, व्यापार, उद्योग, जेफरसन चाहते थे राज्यों के अधिकार, कृषि आधारित समाज। वॉशिंगटन को इन दोनों के बीच संतुलन साधना था, हालांकि उनका झुकाव थोड़ा हैमिल्टन की तरफ ज्यादा था, आर्थिक स्थिरता के लिए।
और फिर वो फैसला, दो कार्यकाल के बाद पद छोड़ देना, ये भी अपने आप में घटना थी।
बिल्कुल, उनके जीवन का एक और निर्णायक पल। उस वक्त कोई नियम नहीं था कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है।
वो चाहते तो तीसरा कार्यकाल ले सकते थे,
लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, स्वेच्छा से मना कर दिया। इस एक फैसले ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की परंपरा शुरू की। ये दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए एक मॉडल बना।
और उनका विदाई भाषण,
उसमें भी दूरदर्शिता थी। उन्होंने देश को चेताया राजनीतिक गुटबाजी के खतरों से और विदेशी ताकतों के साथ स्थायी गठजोड़ से बचने की सलाह दी। ये बातें आज भी सोचने लायक हैं।
सेवानिवृत्ति के बाद भी दासता पर उनके विचार?
हाँ, अपनी वसीयत में उन्होंने अपने निजी दासों को आजाद करने का प्रावधान किया। मार्था की मृत्यु के बाद, ये दिखाता है कि दासता पर उनके विचार बदल रहे थे, विकसित हो रहे थे। ये उनका अंतिम बयान था उस मुद्दे पर।
ये तो हुई उनकी उपलब्धियां, पर चरणों की किताब का जोर इस बात पर है कि इन सब के पीछे वॉशिंगटन की शख्सियत थी, उनके निजी संघर्ष, उनके मूल्य। तो आखिर वो कौन सी चीजें थी जो उन्हें चलाती थी, उनका दर्शन क्या था?
चरणों का एक मुख्य तर्क ये है कि वॉशिंगटन का वो जो मशहूर शांत स्वभाव था, वो बाहरी कवच था, वो स्वाभाविक नहीं था।
अच्छा।
उनके अंदर बहुत तीव्र भावनाएं थीं, गुस्सा था। चरणों उन्हें दबी हुई ज्वालामुखी जैसी भावनाएं कहते हैं। वॉशिंगटन ने इन पर काबू पाने के लिए पूरी जिंदगी सचेत होकर कोशिश की।
और यही आत्मनियंत्रण उनके काम आया?
हाँ, यही उनके नेतृत्व की चाबी बना। इसी वजह से वो दबाव में शांत रह पाते थे, सोच समझकर फैसले ले पाते थे, दूसरों का भरोसा जीत पाते थे। ये दिखाता है कि महानता अक्सर अंदर की लड़ाई जीतने से आती है।
ये बहुत दिलचस्प है कि उनका संयम स्वाभाविक नहीं, कमाया हुआ था। उनकी महत्वाकांक्षा और गणतांत्रिक मूल्यों में संतुलन कैसे था? क्या वो वाकई अनिच्छुक नेता थे?
देखिए, महत्वाकांक्षा तो उनमें गहरी थी। ऐतिहासिक अमरता, सम्मान, ये सब वो चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं। पर उन्होंने अपनी इस महत्वाकांक्षा को पब्लिक सर्विस और गणतांत्रिक आदर्शों के रास्ते पर मोड़ा। वो अक्सर ये भूमिका निभाते थे कि जैसे सत्ता उन पर थोपी गई है, एक बोझ है, इनाम नहीं।
जैसे सिंसिनेटस?
हाँ बिल्कुल, रोमन नायक सिंसिनेटस की तरह, जो जीत के बाद हल चलाने लौट गया था। माउंट वर्नन लौटने की उनकी इच्छा सच्ची भी थी, पर ये छवि राजनीतिक रूप से भी कारगर थी। लोगों को लगता था कि ये सत्ता के भूखे नहीं हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। तो ये एक मिलाजुला मामला था, महत्वाकांक्षा भी और आदर्श भी।
और अपनी प्रतिष्ठा, अपनी विरासत को लेकर कितने सचेत थे वो?
बहुत ज्यादा। वो चाहते थे कि इतिहास उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति के तौर पर याद रखे। इसे वो सबसे ईर्ष्या योग्य शीर्षक मानते थे। अपनी पब्लिक इमेज का उन्हें बहुत ध्यान रहता था।
क्या इसका उनके फैसलों पर असर पड़ता था?
चरणों मानते हैं कि हाँ, भविष्य की पीढ़ियां उन्हें कैसे देखेंगी, इसकी चिंता ने उन्हें कई बार सही और निस्वार्थ फैसले लेने के लिए प्रेरित किया, जैसे दो कार्यकाल के बाद पद छोड़ना या वसीयत में दासों को आजाद करना। उनका नेतृत्व का तरीका भी देखें तो बहुत प्रैक्टिकल और दूरदर्शी था। वो कोई महान दार्शनिक नहीं थे, पर लोगों को पहचानने की उनमें गजब की क्षमता थी।
हाँ, हैमिल्टन और जेफरसन जैसे बिल्कुल अलग लोगों को साथ रखा।
बिल्कुल, उनकी काबिलियत का इस्तेमाल किया। वो फौरी फायदे की जगह लंबे समय के नतीजों पर सोचते थे। उनका सपना था एक मजबूत, एकजुट, दुनिया में सम्मानित अमेरिका बनाने का।
चरणों एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, लोकतांत्रिक नेतृत्व का रंगमंच। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वॉशिंगटन ये समझते थे कि लीडरशिप सिर्फ पॉलिसी और फैसले लेना नहीं है, इसमें सार्वजनिक प्रस्तुति, प्रतीकात्मक समारोह, इन सब का भी रोल है।
कैसे? सोचिए, वो एक नए गणतंत्र के पहले नेता थे। उन्हें राजशाही की शान और आम आदमी की पहुंच, इसके बीच एक संतुलन बनाना था। उनका पहनावा, उनका व्यवहार, पब्लिक इवेंट्स, सब बहुत सोच समझ कर तय होता था,
ताकि राष्ट्रपति पद की गरिमा भी रहे और वो जनता से कटे हुए भी ना लगें।
बिल्कुल, और इन सबके पीछे जो एक भावना थी वो थी कर्तव्य की। देश के प्रति उनका कर्तव्य सबसे ऊपर था।
अब अगर हम उनके इतने लंबे और महत्वपूर्ण जीवन को देखें, तो वो कौन से तीन खास मोड़ थे जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी? पहला कौन सा माना जाए?
मेरे ख्याल से पहला बड़ा मोड़ फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध का अनुभव ही था। एक युवा, महत्वाकांक्षी पर अनुभवहीन कमांडर, उसने युद्ध की असलियत देखी,
गलतियां की, हार झेली।
हाँ, ब्रिटिश अफसरों का तिरस्कार सहा, पर यहीं उन्होंने लीडरशिप, लॉजिस्टिक्स, अनुशासन सीखा। हार से कैसे सीखना है ये समझा।
और ये उनके लिए निजी तौर पर इतना बदलाव लाने वाला क्यों था?
क्योंकि इसने उनकी कच्ची महत्वाकांक्षाओं को एक शक्ल दी। उन्हें समझ आया कि सिर्फ बहादुरी काफी नहीं, संगठन, रणनीति, धैर्य चाहिए। ब्रिटिश सिस्टम से मोहभंग हुआ, अमेरिकी पहचान मजबूत हुई। ये उनके आगे के जीवन की नींव थी।
दूसरा अहम मोड़?
दूसरा मैं कहूंगी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान, वो वैली फोर्ज वाला दौर, वो चरम कठिनाई का समय, जब सब बिखर रहा था, सैनिक भूखे, नंगे, बीमार थे, हार सामने दिख रही थी।
तब
वॉशिंगटन की दृढ़ता, उनका सैनिकों के साथ खड़े रहना, उनका विश्वास, उसी ने सेना को जोड़े रखा। वो उनकी लीडरशिप की असली परीक्षा थी।
इसका नतीजा क्या हुआ युद्ध पर और उनकी छवि पर?
इसने साबित किया कि वो सिर्फ कमांडर नहीं, एक ऐसे लीडर हैं जो लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, उनमें वफादारी जगा सकते हैं। वो क्रांति का चेहरा बन गए, प्रतीक बन गए। और युद्ध की रणनीति में बदलाव, वो टिके रहने वाली, वो भी इसी दौर में आई, जिसने आखिर में जीत दिलाई। इस अनुभव ने उन्हें एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया।
और तीसरा, शायद सबसे यादगार मोड़, सत्ता का स्वैच्छिक त्याग।
हाँ, और इसे दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, 1783 में युद्ध जीतने के बाद सेनापति का पद कांग्रेस को सौंपना।
और दूसरा?
दूसरा, 1797 में दो कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ देना। ये दोनों ही फैसले उस समय की दुनिया के हिसाब से मतलब अकल्पनीय थे। शासक तो आजीवन राज करते थे या हटाए जाते थे।
इन फैसलों ने अमेरिका और उनकी विरासत को कैसे गढ़ा?
इन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र की सबसे जरूरी परंपराओं की नींव रखी। पहली, सेना पर नागरिक का कंट्रोल। दूसरी, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण।
कि सत्ता किसी व्यक्ति की नहीं, पद की है।
बिल्कुल, और ये जनता की अमानत है। इन फैसलों ने उन्हें सिर्फ एक कामयाब नेता नहीं, एक महान आदर्श बना दिया। उनकी ये विरासत शायद उनकी फौजी जीतों से भी बड़ी है। इसने उन्हें इतिहास में एक खास जगह दी।
वाशिंगटन की इस कहानी से आज के समय में क्या सीखा जा सकता है? कौन से मानवीय सबक हैं इसमें?
कई सारे। पहला तो है इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास। वाशिंगटन ने सीखा कि अपनी तीव्र भावनाओं को, खासकर गुस्से को, कैसे काबू में रखें, दबाव में, संकट में।
ये आज भी बहुत जरूरी है।
हाँ, आवेग में रिएक्ट करने के बजाय शांत रहकर सोचना, ये किसी भी फील्ड में लीडरशिप के लिए जरूरी है। आत्मनियंत्रण से भरोसा बनता है, बेहतर फैसले होते हैं।
और क्या सबक है?
दूसरा, रणनीतिक चुप्पी और सुनने की कला। वाशिंगटन अक्सर कम बोलते थे, पहले सुनते थे, समझते थे। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में ये बहुत कीमती है। बोलने से पहले सोचना, समझना। सबसे असरदार आवाज अक्सर सबसे सोची समझी होती है। तीसरा, नैतिक नेतृत्व और सत्ता छोड़ने का साहस। उन्होंने दिखाया कि संस्था, सिद्धांत, ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बड़े हैं। कब पीछे हटना है, ये जानना भी लीडरशिप का हिस्सा है।
दास्ता पर उनके बदलते विचार, क्या वो भी कुछ सिखाते हैं?
बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि इंसान अपनी गहरी जड़ों वाली मान्यताओं पर भी दोबारा सोच सकता है, नैतिक रूप से विकसित हो सकता है। भले ही ये धीमी प्रक्रिया हो या अधूरी लगे, ये जिंदगी भर सीखने और खुद को सुधारने की क्षमता दिखाता है।
और आखिर में?
आखिर में ये सबक की विरासत चरित्र से बनती है। वाशिंगटन आज भी क्यों याद किए जाते हैं? उनकी ईमानदारी, उनकी विश्वसनीयता, देश के प्रति उनका समर्पण, ये चीजें टिकती हैं।
तो इस पूरी बातचीत को अगर तीन मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि क्या होगी?
भावनात्मक अंतर्दृष्टि ये है कि वाशिंगटन की वो जो शांत स्थिर छवि हम देखते हैं, उसके पीछे एक जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई थी। भावनाओं पर काबू पाने की लगातार कोशिश। महानता अक्सर बाहर से शांत दिखती है, पर अंदर एक संघर्ष चलता रहता है। शांत दिखना और शांत होना, ये उन्होंने सीखा और साधा।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
बौद्धिक रूप से शायद वाशिंगटन की सबसे स्थायी विरासत वो लोकतांत्रिक मिसालें हैं जो उन्होंने जानबूझकर, आत्मसंयम दिखाकर और सत्ता त्याग कर कायम की। सेना पर नागरिक कंट्रोल, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, ये सिद्धांत अमेरिकी और कई दूसरे लोकतंत्रों की रीढ़ बने। उनका सबसे बड़ा योगदान शायद यही वैचारिक नींव रखना था।
और अंत में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि।
सार्वभौमिक सबक ये है कि महानता कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। इसे लगातार कोशिश, आत्म अनुशासन, गलतियों से सीखने और नैतिक रूप से बढ़ने की इच्छा से हासिल किया जाता है। वाशिंगटन अपनी कमियों, अपनी असुरक्षाओं के बावजूद खुद को गढ़कर असाधारण बने। ये हमें याद दिलाता है कि साधारण लोग भी लगन और इरादे से असाधारण बन सकते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।